बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहाँ में आज हम गुफ्तगू करेंगे ईरान और 5+1 के मुज़ाकरात के तनाजुर में। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहाँ। नाज़रीन, ईरान और 5+1 के मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं। जुमे को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ ही बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा भी मुज़ाकरात में हिस्सा लेने के लिए जिनेवा पहुँचे, और आज शनिचर को रूस और चीन के वज़राए ख़ारजा भी जिनेवा पहुँच रहे हैं। ईरान, यूरोपीय यूनियन और अमरीका के दरमियान जुमे को से फरीकी मुज़ाकरात रात देर गए तक जारी रहे, और जिनेवा से मौसूला रिपोर्टों में मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं। इस पेशरफ्त पर सहूनी लॉबी में हलचल मच गई है, और सहूनी हुकूमत के वज़ीर आज़म ने ईरान और 5+1 के दरमियान मुआहदे के इम्कान पर सख्त तशवीश जाहिर की है। और बज़ाहिर सहूनी लॉबी की कोशिशें किसी हद तक मुज़ाकरात की फ़िज़ा को मुतासिर करने में कामयाब रही हैं। चुनांचे फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल की तशवीश पर तवज्जो ज़रूरी है, जबकि अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ख़ुद सहूनी हुकूमत के वज़ीर आज़म बिन यामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर गुफ्तगू में ईरान के साथ 5+1 के मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग दी और सहूनी मफादात के तहफ़ की यकीन दहानी कराई है। ईरान, अमरीका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान से फरीकी मुज़ाकरात जो जुमे को सुबह 8:30 बजे शुरू होने वाले थे मुअख्खर हो गए थे और आखिरी इत्तला मिलने तक शुरू नहीं हो सके थे। आज के प्रोग्राम में हम ईरान और 5+1 के दरमियान जारी मुज़ाकरात के जायज़े के साथ ही सहूनी लॉबी की तशवीश के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे और इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि 5+1 ख़ास तौर पर अमरीकी क़यादत किस हद तक ख़ुद को सहूनी लॉबी के दबाव से आज़ाद करके माकूल रास्ता अख्तियार कर सकती है। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
5 बड़ी ताकतों और जर्मनी पर मुश्तमिल 5+1 ग्रुप और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का ताज़ा दौर बुध के रोज़ जेनेवा में शुरू हुआ है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ और यूरोपीय यूनियन के उमूर ख़ारजा की इंचार्ज कैथरीन एश्टन मुज़ाकरात की सरपरस्ती कर रही हैं। ईरान और 5+1 ग्रुप के दरमियान जेनेवा में होने वाले ये 5वें जौहरी मुज़ाकरात हैं। इससे कबल ईरान और 5+1 ग्रुप के दरमियान 15 और 16 अक्टूबर को जेनेवा में मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें ईरान ने अपने जौहरी मामले के हल के लिए एक जामे मॉड्यूलेशन पैकेज पेश किया था। फरीकैन ने मुज़ाकरात को तामीरी करार देते हुए इस बात पर इत्तेफाक किया था कि काबिल कबूल नतीजे के हुसूल तक मुज़ाकरात के मुंदरजात को आम न किया जाए, और ये तय पाया था कि इख्तलाफात को कम करने और मुश्तरका निकात के हुसूल की गरज से माहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। बादाज़ां ईरान और 5+1 ग्रुप के माहिरीन ने वियना में एक दूसरे के साथ बातचीत की और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया। इन मुज़ाकरात में ईरान के 3 वज़ारतखानों, पेट्रोलियम, सनअत व मादनियात, साइंस और टेक्नोलॉजी और पाबंदियों से मुतालिक माहिरीन ने यूरोपीय माहिरीन के साथ मुज़ाकरात की, जिसे फरीकैन ने हौसला अफजा करार दिया। जबकि ईरान और IAEA के दरमियान वियना में अलहदा मुज़ाकरात हुए, जिसमें जौहरी मामले के फनी निकात पर बातचीत हुई, और इसी बातचीत के तहत तवक्को की जा रही है कि IAEA के सरबरा यूकिया अमानो पीर के रोज़ तेहरान पहुँच रहे हैं। बहरहाल वियना में ईरान और 5+1 ग्रुप के दरमियान माहिरीन के सतह के मुज़ाकरात के हौसला अफजा नतायज सामने आने के बाद फरीकैन ने बातचीत को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया और तय पाया कि दोनों फरीकों की मुज़ाकराती टीमें 7 और 8 अक्टूबर को जेनेवा में एक बार फिर मुज़ाकरात करेंगी। बुध के रोज़ जेनेवा में ईरान और 5+1 ग्रुप के दरमियान पहले दौर के मुज़ाकरात के बाद इंतहाई हौसला अफजा खबरें आना शुरू हुई और कहा जाने लगा कि किसी मुआहदे के मुसव्वदे की तैयारी का इम्कान पाया जाता है, और ऐलान किया गया कि मुज़ाकरात जुमे को भी जारी रहेंगे। जुमे के रोज़ अमरीका और फ्रांस के वज़राए ख़ारजा भी मुज़ाकरात में हिस्सा लेने के लिए जेनेवा पहुँच गए। ایران اور امریکہ کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے امور خارجہ کی انچارج کیتھرین ایشٹن کے درمیان سہفریقی بات چیت بھی ہوئی، جسے خاصا حوصلہ افزا قرار دیا گیا۔ سہفریقی بات چیت 5 گھنٹے تک جاری رہی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تینوں اعلیٰ سفارتکاروں نے ایران کے پرم جوہری معاملے کو نمٹانے کے حوالے سے کسی معاہدے کے مسودے کی تیاری کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے ایٹمی مذاکرات کار عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف، امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ کیتھرین ایشٹن کی ملاقات بہت ہی تعمیری رہی ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ جمعے کو ہونے والی ملاقات ایٹمی معاملے کے سلسلے میں معاہدے کے مسودے کا جائزہ لینے کی غرض سے منعقد ہوئی اور ہفتے کو بھی جاری رہے گی۔ روس اور چین کے وزرائے خارجہ بھی آج ہفتے کے روز جنیوا پہنچ رہے ہیں، جبکہ جرمنی اور فرانس کے وزرائے خارجہ پہلے ہی جنیوا میں موجود ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جمعرات کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر گروپ 5+1 اور ایران سنجیدگی کے ساتھ کوشش کریں تو ایٹمی معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ ایران اپنے جوہری حقوق پر کوئی سودے بازی نہیں کرے گا۔ مذاکرات میں پیش رفت کی باتوں کے باوجود امریکی صدر نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے ایران کو ایٹمی ہتھیاروں تک رسائی سے روکنے کے لیے سبھی آپشن میز پر موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک ایران کے جوہری معاملے کے حل کے سلسلے میں کس حد تک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق ایران، امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان سفریقی بات چیت جو طے شدہ پروگرام کے تحت آج مقامی وقت کے مطابق صبح 8:30 بجے ہونا تھی، ناگزیر وجوہات کی بنا پر مؤخر کر دی گئی ہے۔ تادم تحریر فریقین کی جانب سے اس بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا کہ یہ ملاقات کب ہوگی۔
بہرحال اس وقت پوری دنیا کی نگاہیں جنیوا پر مرکوز ہیں، جہاں ایران اور 5+1 کے درمیان مذاکرات بہت ہی حساس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور جنیوا سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا جا رہا ہے کہ ایران اور 5+1 کے نمائندے کسی معاہدے کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، لیکن اس سلسلے میں تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو سے پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قندیل عباس، لندن اسٹوڈیو سے پروگرام میں حصہ لیں گے بر صغیر کے معروف تجزیہ نگار شبیر رضوی، اور کراچی سے آج کی گفتگو میں شامل کیا جائے گا پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر پرویز شفیع کو۔ چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو اور ڈاکٹر قندیل عباس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قندیل عباس صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
قندیل عباس صاحب، خبریں آپ کے پیش نظر ہوں گی، ایران اور 5+1 کے مذاکرات اہم مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ مذاکرات ماہرین کے درمیان شروع ہو کے جمعے کو ختم ہو جانے تھے، لیکن مذاکرات میں توسیع کر دی گئی اور آج بھی جاری ہیں، اور مذاکرات میں غیر متوقع طور پر حصہ لینے کے لیے 5+1 کے وزرائے خارجہ بھی جنیوا پہنچ چکے ہیں۔ اس پوری صورتحال کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، اس وقت دنیا کے جتنی بڑی بڑی نیوز ایجنسیز، نیوز چینلز ہیں، وہ بڑے براہ راست نظر رکھے ہوئے ہیں جنیوا مذاکرات کے اوپر، کیونکہ 2006 میں یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے اور اس کے 5-6 دور ابھی تک ہو چکے ہیں، اور ان تمام مذاکرات کے دوران بڑی طاقتوں کی کوشش یہ رہی ہے کہ ایران کو ان مطالبات کے اوپر مجبور کیا جا سکے کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام آگے بڑھانے سے روک دے، لیکن ہمیشہ یہ مذاکرات کسی خاص نتیجے تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہوتے رہے ہیں۔ اور پچھلے 33-34 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد سے جب ایران کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، تو اس کے سیاسی دباؤ کے ساتھ ساتھ اقتصادی پابندیاں بھی لگائی گئیں، لیکن ان سیاسی دباؤ اور اقتصادی پابندیوں کا آج تک کوئی خاطر خواہ جو نتائج ہیں وہ برآمد نہیں ہوئے، اور بڑی طاقتیں اور دنیا کے جتنے ممالک، انہوں نے دیکھا کہ طاقت کا استعمال یا پابندیوں کا استعمال یا اس طرح کے غیر روایتی ہتھکنڈوں کا استعمال جو ہے ایران کو مجبور نہیں کر سکا اپنے رستے سے ہٹنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک طرف تو خود بڑی طاقتوں کو اس حقیقت کا احساس ہو گیا ہے کہ ایران جیسی طاقت کو پابندیوں کے ذریعے اور سیاسی دباؤ کے ذریعے وہ کسی غیر روایتی मुतालबे के ऊपर सर तस्लीम नहीं खम करा सकते, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो ईरान के मौक़िफ़ को समझने के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं। और दूसरी तरफ उनको ख़ुद जो बैनुल अक़वामी सतह पर एक ईरान का पॉजिटिव इमेज क्रिएट हुआ है, ख़ास तौर पर जंग मुखालिफ जो कम्पेन थी ईरान की, ख़ास तौर पर सीरिया के हवाले से और इजिप्ट के हवाले से, उसने एक पॉजिटिव इमेज ईरान का डेवलप किया है। इससे पहले अफ़गानिस्तान और इराक़ में ईरान ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया, तो इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा जब एक आलमी अमन क्रिएट करने में हो रहा है तो ईरान का इसमें तावन भी हमें सामने नज़र आ रहा है कि जिस अंदाज में एक तरफ सहयोनी हुकूमत, दूसरी तरफ कई अरब ममालिक जो हैं वो ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें ये मुज़ाकरात कामयाबी से हमकिनार ना हो सकें, लेकिन इसके बावजूद बड़ी ताकतें इस बात को रियलाइज़ कर रही हैं कि इसराइल और अरब ममालिक के कई मफादात अपनी जगह पर, लेकिन ईरान की अहमियत को वो इसमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए मैं समझता हूँ कि अब जनेवा मुज़ाकरात जो रहे हैं इसमें एक बुनियादी नुक्ते पर इत्तेफाक हो रहा है कि जो आईएई की पिछली जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनको जब सामने उन्होंने रखा तो उन्होंने देखा कि आज तक जो आईएई के जितने इंस्पेक्टर्स ईरान गए हैं, इंस्पेक्शंस किए हैं, उनमें से किसी एक रिपोर्ट में भी ये एविडेंस नहीं मिल सका कि ईरान का प्रोग्राम फौजी मकासद के लिए, बल्कि हमेशा वहाँ पर उन्होंने रेटिफाई किया और इस बात की तायद की कि ईरान का जो प्रोग्राम है फ़िलहाल पुराम मकासद के लिए है, इससे एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको मेडिकल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसमें बड़ी ताकतों की शह पर और दबाव पर ये हमेशा एक चीज़ शक का इज़हार ऐड कर दिया जाता था कि ये जो एटमी प्रोग्राम है अब तक तो पुराम मकासद के लिए, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है इसके फौजी मकासद भी हों, लेकिन इस वक्त तक ऐसा कोई एविडेंस ना आना जो है वो ईरान की एक बड़ी फतह है और दूसरे ममालिक को रियलाइज करने का एक मौका मिला कि ईरान फौजी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इस स्टेज पर भी अगरचे ईरान पर एक गैर रवायती किस्म का दबाव है कि वो यूरेनियम की एनरिचमेंट मुकम्मल तौर पर रोक दे, जबकि दूसरी तरफ ईरान का मुतालबा ये है और ईरान की ख्वाहिश ये है कि वो अपनी अंदरूनी ज़रूरियात के लिए, अपने मेडिकल के शोबे के लिए, एग्रीकल्चर के शोबे के लिए और तवानाई के शोबे के लिए ईरान अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखना चाहता है, और इसके लिए वो NPT पर ऑलरेडी साइन कर चुका है, और ये साइन करने के बाद जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर एजेंसीज हैं खासतौर पर IAEA उसके इंस्पेक्टर यहां पर रहकर इसके ऊपर सुपरविजन रख सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल यह है कि तमाम रास्ते अब बड़ी ताकतों के लिए बंद हो चुके हैं कि वो ईरान का एक मुतालबा जो है वो कानूनी मुतालबा इसको तस्लीम करते हुए सबसे पहला कदम ये उठाएं कि जो अब तक बड़ी बड़ी पाबंदियां ईरान के ऊपर लगी हैं जिससे वहां के बेगुनाह मासूम बच्चों, औरतों और बूढ़ों के ऊपर एक बहुत मनफी असरात मुरतब हुए हैं, उसके इस तरह की पाबंदियां एकदम उठा ली जाएं और ईरान को जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल प्रोसेस है वो रीजनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी उसमें शामिल किया जाए। इस तरह की जब ईरान का इमेज अब जो बिल्ड हुआ है और वो इस तरह के मुज़ाकरात के बाद मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है और ईरान की जो सिफारती और सियासी कामयाबियाँ वो अपने एक पीक पर पहुँच सकती हैं। इन मुज़ाकरात में अब नतीजा खेज मरला जो आ गया है तो इसमें ईरान की तरफ लोगों की निगाहें कि वो एक कामयाबी के बहुत करीब है, लेकिन ईरान की इस तरह की मुतवक्को कामयाबी जो है उसने इसराइल के लिए और बाज़ अरब ममालिक के लिए तश्वीश क्रिएट कर दी है।
बहुत बहुत शुक्रिया कंदील अब्बास साहब। और नाज़रीन चलते हैं लंदन जहाँ बरे सगीर के मुमताज़ दानिशवर और सीनियर तजिया निगार शब्बीर रज़वी साहब मौजूद हैं। रज़वी साहब अस्सलाम वालेकुम।
अलैकुम अस्सलाम।
जनाब रज़वी साहब, जनेवा मुज़ाकरात के ताल्लुक से मगरब में ख़ास तौर पर बरतानिया में क्या तासुर पाया जाता है, वहाँ के सहाफती हलकों का तज़िया क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे ब्रदर ने इस्लामाबाद से बहुत अच्छी तरह से बयान किया, फरमाया कि ईरान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये एक की इश्यू है इस वक्त। देखिए, ईरान की सिचुएशन एक आलमी सरफ प्लेटफॉर्म पर बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। एक तरफ ईरान जो है नॉन अलाइन मूवमेंट का प्रेसिडेंट है पिछले तीन आने वाले 3 साल के लिए। अभी सितंबर में अगर रूहानी की मुलाकात पुतिन साहब से हुई थी रशिया में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मौके पर, और फिर मजीद डेवलपिंग ममालिक में ईरान की जो है एक पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। और यानी कि पिछले 8-10 साल से जिस तरह से ईरान ने साउथ अमेरिका में ताल्लुकात बनाए हैं ब्राज़ील के साथ, चिली के साथ, अर्जेंटीना के साथ, वेनेजुएला के साथ, तो हर उस खित्ते में जहां पर लोग जानते नहीं थे कि ईरान की क्या पोजीशन है, ईरान अपनी पोजीशन को वाजे करते जा रहा है और ताल्लुकात बनते जा रहे हैं। अच्छा, जहां तक इकोनॉमिक इश्यू का ताल्लुक है और जो सैंक्शंस का सिचुएशन ईरान के लिए हालात जो है आवाम के लिए, ज़ईफ़ों के लिए, गुरबा के लिए, बच्चों के लिए जो मेडिसिन की दुश्वारी हैं, दूसरे इश्यूज़ हैं, वो एक तरफ, मगर प्रॉब्लम ये है यूरोप में भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही हैं। यूके में जो है ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, ग्रीस ऑलमोस्ट बैंकरप्ट है, साइप्रस में सिचुएशन खराब है, स्पेन को देख लें, पोर्चुगल को देख लें, इटली को देख लें, हत्ता ये कि फ्रांस और हॉलैंड की भी सिचुएशन बेहतर नहीं है, और अमेरिका का तो आपको पता है कि उनकी डेट सीलिंग का प्रॉब्लम जो पिछले 2 हफ्ते पहले उन्होंने कोशिश की कि उसको मजीद ठीक किया जाए। तो यूरोप ये देख रहा है इस वक्त कि हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस जो है एक 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 अगर उसका आप तजिया करें तो ईरान की सैंक्शंस की बिना पर जो है यूरोप और अमेरिका को भी शदीद नुकसान पहुंच रहा है। देखें, ये नेशंस जो है ट्रेडिंग नेशंस हैं, यूरोप के नेशंस, अमेरिका बिजनेस के ताल्लुक से ईरान के साथ वो ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहते हैं, तो इसकी बिना पर ये जो न्यूक्लियर इश्यू है और जिनीवा की जो मीटिंग्स हैं, क्योंकि ईरान की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, तो उन यूरोप को और 5+ को इस मौके पर ईरान के साथ बैठ के गुफ्तगू करना ज़रूरी और अहम लग रहा है, क्योंकि उसके ये गुफ्तगू अगर ना हो तो सिचुएशन जो है ना सिर्फ ईरान के लिए यानी कि दुश्वारी का बायस हो सकती है, मगर यूरोप और अमेरिका के लिए और ज़्यादा नुकसान दे पेश हो सकती है। तो ये एक एक नुक्ता हो गया। दूसरा, अगर आप देखें कि पॉलिटिकल लेवल पर ईरान ने जो है सैंक्शंस के बिना पर या ईरान को साइडलाइन करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी ईरान की पॉलिटिकल रिलेशनशिप तकरीबन हर ममालिक से जो है अच्छी खासी है, सिवाय यानी कि यूरोप और अमेरिका से जो हिस्टोरिकल इश्यूज हैं उसकी बिना पर जो है ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सक रहे हैं। मगर एक सिर्फ खूबसूरती जो दिखाई दे रही है इस वक्त कि इज़राइल और सऊदी अरेबिया, ये दो ममालिक हैं जो यूरोप और ईरान के ये मुज़ाकरात और डिस्कशंस और अग्रीमेंट के बिना पर ये जो है साइडलाइन हो जाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है वो इज़राइल और सऊदी अरेबिया को इस वक्त, अगर ईरान और यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे होते हैं उसकी बिना पर इनकी पोजीशन जो है काफ़ी वीक हो जाती है, और हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से सऊदी मिनिस्टर्स, सऊदी सॉर्ट ऑफ रूलिंग फैमिली के मेंबरान जो है इजरायली सीक्रेट सर्विस के साथ जॉर्डन में मुलाकात कर रहे हैं, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को किस तरह से आइसोलेट किया जाए, मगर ईरान को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। यहां पर मुझे अल्लामा इकबाल का जो नुक्ता है वो याद आ रहा है कि अल्लामा इकबाल ने जैसा कहा था कि अगर तेहरान ईस्ट का जिनीवा बन जाए तो दुनिया की हालत चेंज हो सकती है, तो मुझे यही लग रहा है कि इस वक्त वो जिनीवा में मीटिंग कर रहे हैं, मगर हो सकता है कि तेहरान एक वो अहम सिचुएशन और एक वो इंपॉर्टेंट शहर बनने वाला है ईस्ट का, जहां पर जो है इंसानियत की ह्यूमन राइट्स के इश्यूज और ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन पर जो है ईरान जो है फिर काम कर सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारे कराची स्टूडियो में पाकिस्तान के एक और मुमताज़ तजिया निगार डॉक्टर परवेज़ शफ़ी साहब मौजूद हैं। परवेज़ शफ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, जनेवा में ईरान और 5+1 के दरमियान मुज़ाकरात जुमेरात को शुरू हुए, और प्रोग्राम के मुताबिक ये मुज़ाकरात माहरीन के दरमियान जुमेरात और जुमे को अंजाम पाने थे। जुमेरात के मुजाकिरात के बाद अचानक ऐलान किया गया कि अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी खुद मुजाकिरात में हिस्सा लेने के लिए जिनेवा पहुँच रहे हैं। जुमे को वो जिनेवा पहुँचे और जुमे को जिनेवा में ईरान, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के वज़रा खारजा के दरमियान रात देर गए तक मुज़ाकरात जारी रहे और जुमे को इसी के साथ बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़रा खारजा भी पहुंच गए और आज चीन और रूस के वज़रा खारजा भी जिनेवा पहुंच रहे हैं। अगरचे मुज़ाकरात में क्या तय पाया है और क्या होने जा रहा है उसकी तफसीलात पूरी तरह से सामने नहीं आई हैं, लेकिन रिपोर्टों में ये बताया जा रहा है कि किसी मुआहदे और मुश्तरका बयान को आखिरी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। ये जो मजमू सूरत हाल है इसके बारे में आपका तज़िया क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अभी फरमाया कि टेक्निकल और के जो माहरीन हैं उनके दरमियान अब मुज़ाकरात हो रहे हैं और सियासी लीडर भी वज़राए खारजा जो हैं वो भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो इस इलामिये का मकसद या जो पर्पज़ है वो ज़ाहिर है ये है कि इन टेक्निकल फनी मामलात को जल्द से जल्द तय किया जाए और किसी न किसी तरह एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचा जाए, क्योंकि जाहिर है ईरान के ऊपर तो पाबंदियां लगी हुई हैं, तो जाहिर है उनका नुकसान हो रहा है, उनके लोग सफ़र कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उसको नुकसान हो रहा है, लिहाजा वो तो चाहते हैं कि भाई जितनी जल्दी ये मामला तय हो जाए, क्योंकि वो कोई इलीगल या इमोरल काम तो कर नहीं रहे, लिहाजा ये कि उनके ऊपर पाबंदियां नाजायज़ हैं तो वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द उठ जाए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का जो इंटरेस्ट है या मफाद है वो ये है कि जैसे पहले था कि किसी तरह ईरानी इस्लामी इनकलाब को वो रोल बैक करे या उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करे, और वो काफ़ी कोशिशें कर चुका है और अभी भी कर रहा है, लेकिन अब उन्होंने ये शायद रियलाइज कर लिया या इस बात से वो कन्विंस हो गए कि जो वक्त है वो ईरान के पास है या ईरान के साथ है, क्योंकि जैसे जैसे देर होती जाएगी, अमेरिका का ये ख्याल था कि उनकी पाबंदियां और जोर पकड़ेंगी, मुल्क में बगावत होगी, मुजाहरे होंगे, लोग बेचैन होंगे और इक्तेसादी तौर से उनकी हालत और ख़राब होगी, तो हमारी डील जो है या हमारी पोजीशन जो है वो मजबूत होगी, लिहाजा हम उनके साथ कोई बार्गेन करेंगे और वो ज़्यादा बेहतर होगा, और उस चीज़ सारी चीज़ का मकसद ये होगा कि ईरान की हुकूमत को और पहले से ज़्यादा कमज़ोर किया जाए। अगर आप 1990 की दिहाई में इराक के ऊपर जो पाबंदियाँ लगी, हर पाबंदी और हर माहदे के बाद मुश्किलात जो हैं वो इराक पे आपको पता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती गई और किसी न किसी बहाने उस पे मज़ीद पाबंदियाँ लगती रहीं, तो अमेरिका का जो मकसद है वो ये कि किसी तरह ईरान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए, और अगर अभी डायरेक्टली वो नहीं कर सका और इस दौरान जो वक्त था उसमें ईरान ने इक्तेसादी तौर से, फनी तौर से और न्यूक्लियर लेवल पे बहुत तरक्की की, जिसकी वजह से अब वो काफ़ी परेशान भी हैं कि इस दौरान ईरान का वैसे तो इन जनरल नुकसान हो रहा है, लेकिन फनी लेवल के ऊपर जो न्यूक्लियर पावर है उसके ऊपर वो काफ़ी आगे अपनी तरक्की करता जा रहा है, और हो सकता है कि और चंद सालों में अगर उसको कंट्रोल या रेगुलेट नहीं किया गया तो ये शायद अमेरिका के कंट्रोल से चीज़ बाहर हो जाए, लिहाजा उनका इस वक्त मफाद ये है कि भाई किसी तरह इंगेज किया जाए। तो फनी लेवल पे तो जो पोजीशन है वो तो अभी भी ईरान की वही है, अमेरिका की भी वही है, लेकिन अब चूंकि सियासी फ़जा बदल चुकी है तो लिहाजा ये कि अब इन चीज़ों को हल करने में दोनों पार्टीज का ज़्यादा इंटरेस्ट है। ईरान का तो पहले ही था, लेकिन अब अमेरिका का भी ज़्यादा इंटरेस्ट है। दूसरा ये कि इस चीज़ का ज़्यादा इंटरेस्ट अमेरिका का इसलिए भी हो गया कि इराक और अफगानिस्तान के बाद अब उनमें, जैसे हमने शाम में देखा कि अमेरिका ने आखिरी वक्त पे पुल बैक कर लिया और अपना अटैक नहीं किया शाम के ऊपर, ये इस बात की निशानदेही करता है कि अमेरिका अब फौजी एतबार से भी काफ़ी कमज़ोर है। वो दूर बैठ के दो चार मिसाइल तो मार सकता है, लेकिन ये कि किसी कंट्री में, किसी मुल्क में जाके, जैसे इराक और अफगानिस्तान में गए थे, तो उस लेवल पे अभी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लिहाजा उनके भी फनी एतबार से वो कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ जितनी जल्दी हल कर ली जाए तो शायद ये है। दूसरा, उन्होंने ये भी कैलकुलेशन की, चाहे वो खुशफहमी पे ही मबनी हो, कि अगर हम ईरान को अपने साथ मिला लेते हैं तो हमें फिर शायद हो सकता है सऊदी अरब की और अरब शेखों की ज़रूरत ना हो। तो ये बात ज़ाहिर है अरबों के लिए, इसराइल के लिए बड़ी तशवीशनाक है कि खुद अमेरिका अपने मफाद के लिए उनके साथ जो है वो दोस्ती को कम कर रहा है और ईरान के साथ बढ़ा रहा है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि भाई ये कितना उनको फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। लेकिन ये कि टेक्निकल लेवल पे जो मामलात हो रहे हैं, अगर ईरान इस वक्त 10वीं सीढ़ी पे खड़ा हुआ है, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए ये सारा कारनामा हसन रूहानी का नहीं है, ये पिछले 8 साल में जो ईरान ने तरक्की की है उस बुनियाद के ऊपर ये उनसे निगोशिएट कर रहे हैं। हो सकता है अगर अहमदी निजात साहब होते हैं या पिछली हुकूमत होती, तो अगर वो थोड़ी सी सियासी फजा को और अपने जो रेटरिक है उसको थोड़ा कम कर देते तो हो सकता है शायद उनसे भी बातचीत हो जाती। लेकिन ये कि इस 8 साल के अरसे के दौरान उन्होंने जो इतनी तरक्की की है, तो अब उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि जिसके साथ वो अमेरिका के साथ बार्गेन कर सकें। तो इस वक्त ईरान की पोजीशन जो है मजबूत है। अमेरिका को भी खौफ है कि ये टेक्निकल लेवल पे इतनी तरक्की करते जाएंगे तो इन द लॉन्ग रन ये हमारे लिए ही मुश्किलात का बायस बनेगी, और इसके लिए उन्होंने शायद फैसला किया कि भाई इस वक्त मौका अच्छा है। हालांकि पिछली दफ़ा जब मॉडरेट गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने उसको साथ नहीं दिया था, उनके साथ भी धोखा किया था और सारी पाबंदियां लगा के उनसे अपनी बातें मनवाई थी। लेकिन ये कि 8 साल के बाद अब वो सिचुएशन नहीं है, तो इसलिए ये कि ये जो अभी की हुकूमत है ये उनके साथ काफ़ी भरोसे और खुद एतमादी के साथ उनसे बातचीत कर सकती है कि कौन से ऑप्शंस जो हैं वो या बार्गेन में इस्तेमाल किए जाएं, कौन से नहीं किए जाएं। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि जो बॉटम लाइन है उनकी वो यही है कि जो उनके हकूक़ हैं बहसीत कौम, वो किसी तरह भी तल्फ ना हो, ज़ाया ना हो और उसके ऊपर उसका असर ना पड़े।
बहुत बहुत शुक्रिया परवेज शफी साहब। कंदील अब्बास साहब, जनाब परवेज शफी साहब ने भी इशारा किया कि सहूनी हुकूमत और बाज़ अरब हुकूमतों को काफ़ी परेशानी है, ख़ास तौर पर सहूनी हुकूमत के वज़ीर आज़म मुज़ाकरात में पेशरफ्त और किसी मुआहदे के इम्कान से काफ़ी परेशान और बरहम नज़र आ रहे हैं। उनके इस बयान को तो ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई कि इसराइल ईरान और 5+1 के मुआहदे की पाबंदी नहीं करेगा, लेकिन अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को टेलीफोन करके उनकी जो दिलजोई की है उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इतने पुराने क्राइसिस को रिजॉल्व करना होता है, सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए यूजुअली एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स या CBMs के नाम से एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती है कि अगर दो मुखालिफ ताकतें हैं या पार्टीज़ हैं, उनके अंदर आपने एक रिकन्सिलिएशन या एक उनको नज़दीक लाने की कोशिश करनी है, तो उससे पहले उनके दरमियान एक एतमाद साजी की फ़िज़ा शुरू होना ज़रूरी होती है। इस एतमाद साजी की फ़िज़ा के लिए मेरा ख़्याल है कि ईरान पिछले कई सालों से, ख़ास तौर पर पिछले 5-7 सालों से ईरान का ये ख्वाहिश रही है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ कोई डायलॉग शुरू करना चाहता है तो एतमाद साजी की फ़िज़ा बहाल करनी चाहिए उनको। और एतमाद साजी की फ़िज़ा बहाल करने का ये तरीका था कि वो ग्रेजुअली सेंक्शंस जो हैं वो अपने हटाते ईरान के ऊपर से। इस ईरान के मुतालबे के बरअक्स हमने देखा कि अभी लास्ट ईयर तक ईरान अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर सेंक्शंस बढ़ाई जाती रहीं। अब अचानक इस तरह का एक डायलॉग शुरू होना और उससे मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा कोई तवक्कुआत वाबस्ता करना शायद सही ना हो, क्योंकि इसमें एक काफ़ी अर्सा लगेगा और बहुत सी ऐसी बातें हैं जहाँ पर ईरान अपने मौक़िफ़ से नहीं हट सकेगा और बहुत से ऐसे मसाइल आएंगे जहाँ पर बड़ी ताकतों के रास्ते में भी कई रुकावटें आएंगी। लेकिन इसमें अहम तरीन बात यह है कि वो सारे सिनारियोज जिनकी वजह से बड़ी ताकतें स्टेज पर पहुंची हैं उसमें कम अज़ कम इस वक्त चार रीजनल ऐसे इश्यूज हैं जिसके अंदर अमेरिका डायरेक्ट फंसा हुआ है और उसमें ईरान का रोल कंसिडर किए बगैर अमेरिका वहाँ से कामयाबी से या आसानी से निकल नहीं सकता। इसमें दो तो खुद ईरान के पड़ोस में आप देखिए इराक और उसके साथ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में इन दोनों ममालिक में ईरान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और फॉलोअर्स भी हैं और लोग ईरान की बात को अहमियत भी देते हैं, वहाँ की हुकूमतें भी और आवाम भी। इसी तरह सीरिया में हमने देखा कि ईरान ने बहुत की रोल प्ले की अपनी डिप्लोमेसी ऐसी यूज़ की रशिया के साथ मिलकर कि एक सुपर पावर का दावा करने वाले मुल्क को अपने फर्स्ट टाइम दुनिया में ऐसे हुआ है कि उनको अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा और उनके करीबी हलीफ यानी बरतानिया ने भी उनका साथ देने से इनकार कर दिया। तीसरा मसला जो अहम तरीन मसला है वो फ़लस्तीन का मसला है और लुबनान का मसला है जो डायरेक्ट इसराइल के साथ लिंक करता है। अब इस मसले में भी मेरा ख्याल ये है कि जो अमेरिकन डिप्लोमेट हैं और यूरोपियन डिप्लोमेट्स हैं वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अगर ईरान को इसमें से माइनस करके इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो इस मसले का हल ना सिर्फ ये कि कोई निकल नहीं सकता बल्कि मसाइल मज़ीद पेचीदा होते जाएंगे। अब इन कम अज़ कम चार इशूज़ के अंदर हम देखें और उसके अलावा बाकी कई इशूज़ हैं जिसमें ईरान का इम्पोर्टेंट रोल है। इन इश्यूज के हवाले से क्योंकि अमेरिका को अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट भी देखने, अपने बराह रास्त मफादात भी देखने और यूरोप को भी देखने, ख़ास तौर पर उनके जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उसको सामने रखकर, वो मेरा ख्याल है कि ईरान के साथ मजीद दुश्मनी को बढ़ाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इसलिए वो इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि ईरान को उस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर लाया जाए। और ज़ाहिर है ईरान के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर आने के बाद पूरे मिडल ईस्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट ताकत है वो ईरान है, और ईरान के इस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स आने के बाद ये छोटी छोटे अरब स्टेट्स हैं, सऊदी अरब की अहमियत उसकी वहां पर मकामात मुकद्दसा की वजह से है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप का जो क्लेम था सऊदी अरब का वो बहुत अरसा पहले वो खो चुका है। लोग सिर्फ एक अगर वहां की सरजमीन का एहतराम करते हैं तो मकामात मुकद्दसा की वजह से, बाकी वहां के जो हुक्मरान हैं उनकी इसराइल के साथ दोस्ताना पॉलिसियां और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के जो इशूज उसमें आइसोलेटेड किस्म के स्टेटमेंट्स जो उनके आते रहे इसकी वजह से वो अपनी वो अहमियत खो चुके हैं। अब एक तो ये एक तरफ तो ये कि ईरान मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है और ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने से यूरोपीय ममालिक को और अमेरिका को समझें एक मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के साथ उनकी दोस्ती या उनका ताल्लुक बनता है। ऐसा ताल्लुक बनने का ज़ाहिर बराह रास्त असर इसराइल पे और जो छोटे छोटे अरब स्टेट्स हैं ज़रूर होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी ये तशवीश जो है वो बेमैनी है। ईरान ने सबका पॉलिसी में भी कभी किसी के अगेंस्ट ऐसी कोई पॉलिसी नहीं सोची कि वो उनको एलिमिनेट करना चाह रहा हो यानी अरब ममालिक के बारे में। हाँ, जहाँ तक सहूनी हुकूमत का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि ईरान का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि वहाँ जो फिलिस्तीनी अवाम है उनको इंटरनेशनल लॉ के अंदर रहते हुए उनके हकूक मिलने चाहिए, और अगर ईरान मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर आ जाता है तो इस इशू को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी कि यूनाइटेड नेशन के ज़रिए आलमी इदारों के ज़रिए फिलिस्तीनी अवाम को उनके हकूक दिलाए जाएँ, और ये चीज़ मैं समझता हूँ इसराइल के लिए परेशान कौन है।
बहुत शुक्रिया जी शब्बीर साहब। बाराक ओबामा ने ये ज़रूरत क्यों महसूस की कि सहूनी हुकूमत के वज़ीर आज़म को टेलीफोन करें और जेनेवा मुज़ाकरात के ताल्लुक से उन्हें ब्रीफिंग दें?
देखिए, जहाँ तक अमेरिका के प्रेसिडेंट का ताल्लुक है, चाहे वो ओबामा हो या कोई हो, ज़ायोनिस्ट लॉबी जो है बहुत ही स्ट्रांग है यूएसए में। आईपैक एक ज्यूइश लॉबी की ऑर्गेनाइजेशन है जो यानी के मजीद बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करते हैं हर पॉलिटिकल एक्टिविटी जब होती है अमेरिका में, चाहे वो कांग्रेस के मेंबरान हो, सेनेट के हो या खुद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो। तो आईपैक लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि वो ये चाहते हैं कि इसराइल के मफादात पे जो है कोई असर ना हो अमेरिकन पॉलिसी की बिना पर। और खुद बराक ओबामा साहब हर साल आईपैक की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है वहां पर जाकर ये बयान जरूर देना मुनासिब समझते हैं उनके खुद के यानी के तहफ्फुज़ के लिए कि अगर वो ज़ायनिस्ट लॉबी को सपोर्ट ना करें तो खुद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हो सकता है वो हार जाते इलेक्शन। ये तो एक यूएसए के ताल्लुक से है। और मैं जो आपका सवाल है कि क्यों उन्होंने फोन किया उसका एक सेकंड में एक मिनट में आपको जवाब। यूके की सिचुएशन आप देखें, यूके में ओनली हाफ अ मिलियन ज्यूज रहते हैं और यहां पर तकरीबन 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो ज्यूइश बैकग्राउंड के हैं और यकीनी तौर पर ज़ायनिस्ट लॉबी यूके में भी काफी स्ट्रांग है। इसराइल जो स्टेट क्रिएट किया गया था वो हमारी पार्लियामेंट यूके की पार्लियामेंट में जो डिक्लेरेशन हुआ था बैल्फर डिक्लेरेशन उसकी बिना पर स्टेट ऑफ इसराइल क्रिएट किया गया जहां पर दुनिया भर के जो है इसराइली ज्यूज को जमा किया और फिर बाद में यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन के बिना पर जो है स्टेट ऑफ इसराइल को क्रिएट किया गया। सो ये दोनों ममालिक और यूरोप के मजीद दूसरे ममालिक में भी जो है ज़ायनिस्ट लॉबी काफी स्ट्रांग है। इस वक्त बराक ओबामा साहब ने जो मुनासिब समझा और जो चाहा कि वो नेतन्याहू को फोन करके वो मजीद बताएं कि क्या हो रहा है, तो मेरे ख्याल में वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तहफ्फुज़ के लिए और खुद इजरायली और ज़ायनिस्ट लॉबी जो यूएसए में है उनको खामोश करने के लिए उन्होंने मुनासिब समझा के फोन किया जाए। हाउएवर एक मेन चीज यह है कि क्योंकि यूएसए का मफाद और इसराइल का मफाद इस वक्त टकराव पर है तो यह देखना पड़ेगा कि यानी कि अब एक दो महीने एक दो साल में सिचुएशन कैसी
जी
डिवेलप्ड होती है। आया कि इसराइल खुद यूनिलैटरल एक्शन लेगा ईरान के खिलाफ क्योंकि थ्रेट तो किए जा रहे हैं कि नेतन्याहू साहब के अगर भले अमेरिका या यूरोप और उनको सपोर्ट ना भी दें तो वो जो है अपना इंडिपेंडेंटली कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो ये एक यानी कि संगीन हालत इसराइल हो सकता है आने
बहुत
वाले
बहुत शुक्रिया,
बरसों में क्रिएट कर सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज शफी साहब। जनाब अमरीकी
हालत
वजीर खारजा
इसराइल
ने
हो
जिनेवा
सकता है
जाते हुए
आने
तलबीब
वाले
में रुक के सैहूनी वजीर आजम से मुलाकात की, यकीनन मुजाकिरात की ताज़ा सूरत हाल की रिपोर्ट पेश की होगी और मुमकिन है कि ज़रूरी हिदायत भी ली हो।
होने वाले
बराक
हैं
ओबामा
आने
ने
वाले हैं
नेतन्याहू को
यकीनन
टेलीफोन पर
होने
मुजाकिरात के हवाले से
वाले हैं
ब्रीफिंग
आने
दी।
वाले
फ्रांस के वजीर खारजा ने जिनेवा पहुंचने के बाद एक
हैं
इंटरव्यू
आने
में
वाले
कहा
हैं
कि सैहूनी हुकूमत की
बराक ओबामा
तशवीश
ने
पर तवज्जो
नेतन्याहू को
जरूरी
टेलीफोन
है।
पर मुजाकिरात के हवाले से
इस
ब्रीफिंग
सूरत
दी।
हाल के बारे में आप क्या
फ्रांस के
कहेंगे?
वजीर खारजा ने जिनेवा पहुंचने के बाद एक इंटरव्यू में कहा कि सैहूनी हुकूमत की इस सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे?
जाहिर है अमेरिका की जो पॉलिसी है वो सारी की सारी सेहूनी स्टेट जो है उसके इर्द गिर्द घूमती है। वहाँ के जो मफादात हैं उसको उसने तहफ़ुज़ देना है, चाहे वो अमेरिकन मफादात के खिलाफ भी हो। इसी तरह उनकी जो पॉलिसी है, उनके जो मुतालबात हैं, या वहाँ पे जो सेहूनी रियासत के जो सियासतदान या फौजी हुक्मरान है, वो ये बावर कराना चाहते हैं अमेरिका को कि किसी तरह जो है ये चीज़ हमारे मफाद में नहीं है। तो जाहिर है कि इस वक्त जैसे अभी हमारे एक और मेहमान ने फरमाया कि इस टेम्परेरीली या सतही तौर से लगता है कि अमेरिका और इसराइल के मफादात आपस में टकरा रहे हैं, तो ये एक तरीके से ईरान की डिप्लोमेसी की भी फतह है। और दूसरी तरफ ये कि खुद अमेरिका के अवाम जो हैं वो काफ़ी परेशान और तंग आए हुए हैं कि एक मुल्क की लॉबी जो है वो हम पूरे अमेरिका को इस्तेमाल कर रही है और जिसकी वजह से उनका अपना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से ये कि उनको फ़ोन करके उनको तसल्लियाँ भी दी जा रही हैं, उनको तहफ़ात भी दिए जा रहे हैं और उनको बिलियंस ऑफ डॉलर की एड और हथियार भी दिए जा रहे हैं इस बहाने से। तो आप देखें, तारीख में हमेशा यही आया कि चाहे कोई मुआहदा हुआ हो, चाहे बातचीत शुरू हुई हो, हर दफ़ा किसी न किसी बातचीत के बहाने, किसी किसी न किसी एग्रीमेंट के बहाने इसराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार को का ऐलान होता है, या इकोनॉमिक एड बढ़ा दी जाती है, या पिछले कर्जे माफ कर दिए जाते हैं, तो वो काफी हद तक इसराइल का शोर मचाना जो है ना, कि वो भी एक तरीके से अमेरिका को ब्लैकमेल करने की वाली बात है कि भाई ये सब चीजें हो रही हैं जिससे मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, तो आप मुझे किसी तरह इसकी तलाफी करें। तो ये एक ब्लैकमेलिंग की भी टेक्निक है। तो अमेरिका और ओबामा और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं अब इस चीज को काफी हद तक समझ गए हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, हम जो पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं उसमें हमें तंग मत करो, लेकिन उसके बदले हम तुम्हें बहुत सारे तहफ़ुज़ात देंगे, बहुत सारी तुम्हारे मुतालबात मानेंगे, इक्तसादी और फौजी इमदाद भी देंगे। तो इस तनाजुर में जब देखा जाए तो उनको बार बार ये यकीन दहानी कराई जा रही है, और इसके लिए टेलीफोन और बातचीत और वजीर खारजा का उधर जाना, और यहाँ पे इसराइल और सऊदी अरबिया तकरीबन एक ही पेज के ऊपर है। तो लिहाजा जो भी चीज तहफुज इसराइल चाहता है वही तहफुज सऊदी अरेबिया भी आजकल चाह रहा है। तो इससे पता चल जाता है कि मुसलमानों का जो सबसे अहम इलाका है और जिसकी तकद्दस, जैसे अभी हमारे एक मेहमान ने बनाया कि उस जो नेक और जो इलाका है हिजाज का, खाना काबा, मस्जिद नबवी और
शुक्रिया जनाब,
जो जगह है उनकी वजह से लोगों के दिलों में इज्जत है, लेकिन सऊदियों ने उसको अपने लिए एक्सप्रोप्रिएट किया है कि भाई ये हमारी वजह से
बहुत
ये काम हो रहा है।
बहुत तो बहुत शुक्रिया परवेज शफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कंदील अब्बास साहब, डेढ़ मिनट का वक्त हमारे पास है। 5+1 के मगरबी अराकीन अगर इस हद तक सहूनी लॉबी के जेर असर हैं, तो फिर क्या उनसे ये तवक्को रखी जा सकती है कि वो अपने मुल्की और कौमी मफादात को इसराइली मफादात पर तरजीह देंगे?
देखिए, इसकी मुख्तसर सा जवाब यह है कि ईरान ने जो शुरू में फॉरेन पॉलिसी बनाई थी इस्लामी इनकलाब के बाद, वो ये थी कि किसी भी दुनिया के मुल्क से या ख़ासतौर पर बड़ी ताकतों से वो उस वक्त ताल्लुकात रखेंगे या बनाएंगे जब ये बराबरी की सतह पर होंगे और एक दूसरे का वो एहतराम बराबरी की सतह पर किया जाएगा। अगरचे बड़ी ताकतों ने ईरान को रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन इस सारी मुद्दत के अंदर ईरान ने अपने आप को सियासी और माशी लिहाज से उस सतह पर पहुँचा दिया है कि वो अब ईरान को बराबरी की सतह पर ट्रीट करने पर मजबूर हो गए हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि इसराइली या अरब ममालिक या कई और ताकतें आकर इनके डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, लेकिन अब ईरान को वो कंसीडर कर रहे हैं एक बराबर की ताकत के तौर पर, और उनको ये देखना है कि उनके अपने मफादात क्या कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक रीजनल लेवल पर पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। उस चेंज में हो सकता है कि ग्रेजुअली, जैसे अब सऊदी अरब और कई अरब ममालिक और भी आइसोलेट होंगे, इसराइल को भी आइसोलेट होना पड़े, क्योंकि ग्रेटर इसराइल का जो उनका कॉन्सेप्ट था वो ऑलरेडी मर चुका है, और अब इसराइल को अपने सर्वाइवल का एक मसला पड़ा हुआ जितनी सरहदों के अंदर वो है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ी ताकतें मजीद, अगरचे बज़ाहिर हमें महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक वो इसराइल को अपने खातर में लाएंगे, इसलिए कि जो उनके रीजनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट है उसमें इसराइल की अब इन्फ्लुएंस और अहमियत वो नहीं रही जो ईरान की है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें दो राय नहीं कि अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों पर इसराइली लाबी और जंग पसंद प्रेशर ग्रुप का दबाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसा कि ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने अपने दौरे न्यूयॉर्क में कहा था कि अगर मगरब अपने आप को इस लॉबी के दबाव से आज़ाद कराने में कामयाब हो जाता है, तो उससे ये तवक्को रखी जा सकती है कि वो आलमी अमन कायम करने में और अपने मुल्क और कौम के मफादात में इकदामात कर सकेंगे। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@ofsartv.ir। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।